ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संवैधानिक परिषद प्रथम संशोधन अध्यादेश पुनः सिफारिश करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। भूमिहीन और अव्यवस्थित निवास में रहने वाले नागरिकों के लिए दीर्घकालीन समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का कथन। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया के घर संपत्ति शुद्धिकरण विभाग ने मारा छापा। सुशासन के पक्ष में कानूनी जांच में सहयोग करने के मुख्यमंत्री बानिया ने जताई प्रतिबद्धता। और अगर अमेरिकी सेना हॉर्मुज क्षेत्र में दाखिल होगी तो उन पर हमला करेंगे, ईरान ने दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने संवैधानिक परिषद प्रथम संशोधन अध्यादेश जारी करने के लिए इसे फिर से राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल के पास भेज दिया है। इससे पहले सरकार ने यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए रविवार को वापस सरकार को लौटा दिया था। हालांकि आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस अध्यादेश पर पुनर्विचार किए बिना उसे ज्यों का त्यों फिर से राष्ट्रपति के पास सिफारिश करने का निर्णय लिया। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने दी। इसी बैठक में लिपुलेख लिम्पिया धोरा सीमा विवाद के समाधान के लिए नेपाल और भारत के बीच समन्वय आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने भारत के साथ G2G माध्यम से 60,000 मेट्रिक टन यूरिया और 20,000 मेट्रिक टन DAP उर्वरक खरीदने के लिए कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड को सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी। बैठक ने संसद भवन परिसर में प्रवेश व्यवस्था सहित सिंह दरबार परिसर की संशोधित कुरी योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा पारंपरिक बॉयलर को इलेक्ट्रॉनिक बॉयलर से बदलने के लिए उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने और वायु गुणवत्ता मापन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले 52 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण और 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को भी स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने कहा है कि काठमांडू घाटी के नदी किनारों और सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को व्यवस्थित कर भूमिहीन और अव्यवस्थित रूप से रह रहे नागरिकों के लिए दीर्घकालीन समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। नदी किनारों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण प्रबंधन को लेकर विभिन्न टिप्पणियां और आशंकाएं सामने आने के बीच प्रधानमंत्री शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार का कदम नागरिकों को हटाने के उद्देश्य से नहीं है। सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से संदेश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सभी कार्रवाइयां नागरिकों को विस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि आवास के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए स्थायी समाधान निकालने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में चल रही प्रक्रिया को लेकर लोगों में जानबूझकर डर फैलाया जा रहा है और सभी से अपुष्ट सूचनाओं और भ्रम के पीछे न पड़ने की अपील की है। इनके अनुसार भूमि संबंधी आईन 2021 की कुछ धाराओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अध्यादेश के माध्यम से हटाया गया है। कानूनी बाधाएं हटने के बाद वास्तविक भूमिहीन नागरिकों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने, विवरण सत्यापन और अभिलेख निर्माण का काम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया से भूमिहीनों की वास्तविक स्थिति की पहचान कर पारदर्शी और दीर्घकालीन समाधान की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। असुरक्षित स्थानों पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि अन्य भूमिहीनों के मामले में संबंधित आयोग की सिफारिश और संकलित विवरण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने भ्रम में न पड़ने, अपुष्ट जानकारी न फैलाने और अनावश्यक रूप से न घबराने की अपील करते हुए दोहराया कि किसी भी नागरिक को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग ने बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया के काठमांडू स्थित नक्साल सुंदरा और हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 5 पिपले स्थित घरों व कार्यालयों में छापा मारकर दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। मुख्यमंत्री बानिया ने अपने निवास और संबंधित कार्यालयों पर हुई छापेमारी को लेकर कानूनी जांच में पूर्ण सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। इस घटना के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। विज्ञप्ति में उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश सरकार के संचालन में मितव्ययिता, खर्च कटौती और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है। संविधान संशोधन के लिए बहस पत्र तैयार करने हेतु गठित कार्यदल मंगलवार को संवैधानिक निकायों के पूर्व प्रमुखों, पूर्व मुख्य सचिवों, परराष्ट्र विशेषज्ञों और पूर्व प्रशासकों के साथ चर्चा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह की अध्यक्षता में गठित ये कार्यदल प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक परामर्श करेगा। कार्यदल के सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदी के अनुसार इस बैठक में शामिल विशेषज्ञों से संविधान संशोधन से जुड़े विषयों पर आवश्यक सुझाव भी एकत्र किए जाएंगे। गत वैशाख 10 को हुई कार्यदल की बैठक में पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारियों, पूर्व मुख्य सचिवों, परराष्ट्र विशेषज्ञों तथा प्रशासनिक विशेषज्ञों से परामर्श करने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णय के अनुसार ये चर्चा आयोजित की जा रही है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14# ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। थाईलैंड स्थित नेपाली दूतावास ने कम्बोडियाई सरकार के नए और सख्त नियम की ओर आगाह करते हुए नेपाली नागरिकों से वीजा अवधि से अधिक समय तक कम्बोडिया में न रहने का आग्रह किया है। थाईलैंड स्थित नेपाली दूतावास के अनुसार कम्बोडिया सरकार ने ऑनलाइन स्कैमिंग में संलिप्त लोगों के लिए नए कानून लागू किए हैं, जिसके तहत अपराध की प्रकृति के अनुसार $500,000 तक जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दूतावास के अनुसार कई नेपाली नागरिक विभिन्न उद्देश्यों, विशेषकर पर्यटन के नाम पर कम्बोडिया जाकर वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी वहां रह रहे हैं। साथ ही कुछ नेपाली नागरिकों के अवैध ऑनलाइन स्कैमिंग केंद्रों में शामिल होने की जानकारी भी मिली है। दूतावास ने सभी नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे वीजा अवधि से अधिक समय तक कम्बोडिया में न रहें, किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हों और यदि शामिल हैं तो तुरंत उसे बंद कर नेपाल लौट आएं। इसके अलावा आकर्षक वेतन और सुविधाओं के प्रलोभन में आकर पर्यटक वीजा पर कम्बोडिया या अन्य देशों में रोजगार के लिए न जाने की भी सलाह दी गई है। दूतावास ने यह भी अनुरोध किया है कि विदेश जाने से पहले नेपाल के वैदेशिक रोजगार विभाग और संबंधित देश में स्थित नेपाली दूतावास या वाणिज्य दूतावास से अनिवार्य रूप में संपर्क किया जाए। पोखरा महानगरपालिका ने अतिक्रमित संरचनाओं को हटाने के लिए 35 दिन का नोटिस जारी किया है। बताया गया है कि बस पार्क के लिए निर्धारित 205 रोपनी यानी करीब 5.5 बीघा जमीन वर्षों तक उपयोग में न आने के कारण अब घटकर महज 47 रोपनी यानी 3.5 बीघा रह गई है। अध्ययन के अनुसार इस जमीन पर 400 से अधिक सुकुम्बासी परिवार रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिना पुनर्वास के हटाए जाने का विरोध किया है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल ने अपना पहला वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार को पेश कर दिया है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के संचालक समिति अध्यक्ष डॉ महेन्द्र विष्ट ने आज ये प्रतिवेदन संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमिल सिन्हा को सौंपा। सार्वजनिक सेवा प्रसारण आयन 2081 के अनुसार इस संस्था को प्रत्येक वर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही सरकार को यह प्रतिवेदन संघीय संसद की संबंधित समिति में भी पेश करना होता है। प्रतिवेदन सौंपते समय अध्यक्ष डॉ विष्ट ने बताया कि इसमें नेपाल टेलीविजन और रेडियो नेपाल की वर्तमान स्थिति, तकनीकी क्षमता, संगठनात्मक संरचना, प्रसारण प्रणाली, वित्तीय स्थिति, अब तक किए गए सुधार प्रयास, मौजूदा चुनौतियां और आगामी कार्ययोजना जैसे विषय शामिल हैं। दक्षिणी रसुआ की नौकुंड गांव पालिका के 4 स्थानों पर पक्के पुल बनाए गए हैं। घिचेत नहर, फलाखू नहर, पंगू और पाहा नहरों पर पुल निर्माण के बाद सभी वार्डों के नागरिकों को वर्षभर सुगम यातायात की सुविधा मिली है, ऐसा अध्यक्ष नुरपू सांगबो घले ने बताया। इन पुलों के निर्माण में लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गांवपालिका ने अब तक 74 किलोमीटर ग्रामीण सड़क भी बना ली है। कंचनपुर की पुनर्वास नगरपालिका 7 स्थित ईंट भट्ठे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर टकराने से 2 लोगों की मौत और 1 व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के अनुसार मजदूर कच्ची ईंटों के ढेर पर सो रहे थे, तभी पानी छिड़कने वाला ट्रैक्टर नियंत्रण खोकर उन पर चढ़ गया। मृतकों में उत्तर प्रदेश भारत के 27 वर्षीय अजय कुमार और 9 वर्षीय पवन कुमार शामिल हैं। घटना के बाद चालक फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी सेना के हॉर्मुज में प्रवेश पर ईरान ने चेतावनी दी है। अमेरिका द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों की सहायता की घोषणा के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी सेना वहां प्रवेश करती है तो हमला किया जाएगा। ईरान ने कहा है कि वो जलमार्ग पर नियंत्रण बनाए हुए है और किसी भी हस्तक्षेप का जवाब देगा। इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ने और युद्ध विराम टूटने की आशंका जताई जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संवैधानिक परिषद प्रथम संशोधन अध्यादेश पुनः सिफारिश करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। भूमिहीन और अव्यवस्थित निवास में रहने वाले नागरिकों के लिए दीर्घकालीन समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह का कथन। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया के घर पर संपत्ति शुद्धिकरण विभाग ने मारा छापा। सुशासन के पक्ष में कानूनी जांच में सहयोग करने की मुख्यमंत्री बानिया ने जताई प्रतिबद्धता। और अगर अमेरिकी सेना हॉर्मुज क्षेत्र में दाखिल होगी तो उन पर हमला करेंगे, ईरान ने दी चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।